हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद छठा अध्याय नारद तथा वेद व्यास का संवाद श्लोक नंबर 4। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग की चरणों की वंदना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरन्नस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं दराति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद छठा अध्याय नारद तथा वेद व्यास जी का संवाद श्लोक नंबर 4। इन अमृतमयी शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। वेद व्यास जी पूछ रहे हैं, प्राकल्प विषयामिता स्मृतिं ते मुनि सत्तमा नहेश व्यवधात् काल एष सर्व निराकृतः। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनि सत्तमा नहेश व्यवधात् काल एष सर्व निराकृतिः। प्राकल्प विषयामेतां स्मृतिं ते मुनि सत्तमा नहेश व्यवधात काल एष सर्व निराकृति प्राकल्प विषयामेता स्मृतिं ते मुनि सत्तम नहेश व्यवधात काल एष सर्व निराकृति प्राकल्प विषयामेता स्मृतिं ते मुनि सत्तम नहेश व्यवधात काल एष सर्व निराकृति प्राकल्प विषयामेता स्मृतिं ते मुनि सत्तम नहेश व्यवधात काल एष सर्व निराकृति प्राकल्प विषयामेता स्मृतिं ते मुनि सत्तम नहेश व्यवधात काल एष सर्व निराकृति शब्दों का अर्थ प्राकल्प प्राक मतलब पूर्ववृत्ति पास्ट कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन का समय विषयां विषय वस्तु एतां ये सब स्मृतिं ते मुनि सत्तम स्मृति मतलब सुधि या याद है ते तुम्हारी मुनि सत्तम हे महामुनि न ही एष व्यवधात काल न मतलब नहीं ही निश्चय ही एष ये सब व्यवधात यानी अंतर किया जाता है काल यानी समय आने पर एष सर्व निराकृति एष मना ये सर्व सभी निराकृति का मतलब होता है संहार। अनुवाद हे महामुनि समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर देता है अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का जैसा बना हुआ है। थर्ड करिए श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे कि जिस प्रकार भौतिक शरीर के विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होती उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। श्री नारद ने पूर्व कल्प में जब उन्हें यह शरीर प्राप्त था तभी यह आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी। भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ है भौतिक शरीर द्वारा अभिव्यक्ति की गई आध्यात्मिक चेतना। यह चेतना निष्कृष्ट विनाशशील तथा विकृत होती है लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर अतिमानस की पराचेतना आत्मा के समान होती है और कभी भी नष्ट नहीं होती। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं गुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारणं। पहला सिकंद छठा अध्याय नारद द्वारा नारद तथा वेद व्यास जी का संवाद। अत्यंत ही सुंदर वेद व्यास जी प्रश्न पूछ रहे हैं। वेद व्यास जी कहते हैं प्राक कल्प। प्राक का मतलब होता है जो पहले गुजर चुका है यानी पास्ट में क्या गुजर चुका है। कल्प कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा का एक दिन का समय। एक पूरा कल्प जो होता है वो ब्रह्मा का एक दिन का समय। और एक दिन का समय कितना होता है हमारा एक दिन का समय कितना होता है 24 आवर्स है ना। एक दिन मतलब अगर हमारा कैसे होता है 12 दिन का एक दिन 12 घंटे का एक दिन होता है और 12 घंटे की एक रात होती है। टोटल 24 आवर्स का एक संपूर्ण दिन बनता है। और जब 30 दिन बीतते हैं तो एक महीना होता है और 12 महीने बीतते हैं तो एक साल भी होता है। ठीक है अब टोटल 4 युग होते हैं तो कलयुग सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग। ठीक है अब पहला जो आखिरी जिसमें हम रह रहे हैं वो है कलयुग। उसकी आयु कितनी है? 432,000 वर्ष। उसमें से अभी कितने बीत चुके हैं? 5,000 साल। बाकी कितने बचे हैं? 427,000 वर्ष बाकी बचे हैं। कलयुग की आयु है 432,000, उसका डबल 864,000 द्वापर युग की आयु, 12,96,000 बीतते हैं तो एक त्रेता युग होता है, और 17,28,000 बीतते हैं तो एक सतयुग होता है। और सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों की अगर आयु मिलाई जाती है तो आता है 43,20,000 वर्ष। और ऐसे 43 लाख मतलब 43,20,000 ईयर्स, और 43,20,000 ईयर्स जब 1,000 बार बीतते हैं, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 1,000, जब 1,000 बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी के एक दिन का 12 घंटा होता है, इतना दिन होता है। और 43,02,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000 ब्रह्मा जी का 12 घंटा, और ऐसी ही ब्रह्मा जी की रात होती है, यानी 43,20,000 मल्टीप्लाई इनटू 1,000, ठीक है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो कितना बड़ा होता है? शास्त्र कहता है 8,64,00,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। मतलब यहाँ हमारी पृथ्वी पर जब 8,64,00,000 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन, कंप्लीट दिन समाप्त होता है, और ये होता है एक कल्प की आयु। वैसे तो ब्रह्मा जी के, अब ये तो एक दिन है, ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल, यानी कि ऐसे 30 दिन का एक महीना होता है और 12 महीने का एक साल होता है, और ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? 100 साल तक। और 100 साल जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी है ना, जैसे विष्णु भगवान सांस देते हैं और वो ब्रह्मांड जो है उनके अंदर चला जाता है। कल्पना करो, ये ब्रह्मा जी का दिन इतना बड़ा है तो उस विष्णु, वो भगवान विष्णु कितने बड़े होंगे, कितने विशाल होंगे, जिसकी एक सांस की अवधि, मतलब एक सांस लेते हैं तो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाती है। के यहाँ पर तो एक कल्प की बात हो रही है, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? 8,64,00,000 वर्ष के। तो यहाँ पर वेद व्यास जी पूछ रहे हैं कि प्राकल्प विषयान, जब आप जो विषय बता रहे हो, आप जो अभी बात बता रहे हो कि मैं दासी का पुत्र था और मेरे साथ ऐसा हुआ, ऋषि मुनि आए थे, वो तो पहले वाले कल्प की बात है, और अभी तो ये दूसरा कल्प स्टार्ट हो गया है। तो आगे कहते हैं, एतां स्मृतिन्ते मुनि सत्तम, स्मृति याद कैसे आया आपको, इतनी पुरानी बात आपकी आपको याद कैसे आई? मतलब अब देखो हमारे साथ क्या होता है कि परसों दोपहर को कौन सी सब्जी खाई थी वो याद नहीं हमें, है ना। अभी इस समय हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, भागवत का लेक्चर सुन रहे हैं, कल इस समय हम क्या कर रहे थे वो भी याद नहीं है। तो अब इतना, और भगवान भगवत गीता में बताते हैं 2.13 में, देही नोस्मिन यथा देहे कौमारम यवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर अग्रसर होती है, उसी प्रकार मृत्यु आने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो यानी कि जिस तरह से हमारा पहले छोटे होते हैं, हम लोग पैदा होते हैं छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं किशोरावस्था में, फिर यंग मतलब जवान इनकी दहलीज पर, उसके बाद बुढ़ापा आता है। अब जैसे हम सब बड़े हो गए हैं तो हमें याद नहीं है ना कि हम 2 महीने के थे तो हम किस तरह से दिखते थे या कौन सी हरकतें करते थे, 3 महीने के थे या 1 साल के टाइम पर। अब वीडियो देखेंगे तो बड़ी याद आएगा, लेकिन जिसकी वीडियो नहीं बनी, फोटो नहीं बना होगा, तो उसको तो याद नहीं होगा ना कि हम कैसे दिख रहे थे। जब मैं 6 महीने का था तो किस तरह से कार्य करता था, किस किस लोग ने मुझसे मिला था और क्या क्या किया था। जब मैं 5 साल का था तब कौन कौन से मेरे मित्र थे और मैं उनके साथ क्या कैसे व्यवहार करता था, मैं किस तरह से कार्य करता था, याद नहीं होता। अब एक ही शरीर में जब बचपन की बात जवानी में और जवानी की बात बुढ़ापे में हम भूल जाते हैं, कोई एक आध स्मृति बाकी रहती है, बट इस तरह थोड़े नारद मुनि एक एक बात बता रहे कि फिर उन्होंने ये बताया, फिर मैं ये किया, फिर और वो भी इस शरीर की नहीं। अब देखो वो क्या कह रहे हैं कि इस कल्प से भी पहले वाले कल्प की बात करो। मैं अभी क्या बात कर रही हूँ कि इसी जन्म में जब हम छोटे होते तो हमें याद नहीं होता, अभी कल परसों की बात ही याद नहीं होती है, वो तो बहुत पुरानी वाली बात, सालों के बाद हम बात भूल जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं स्मृतिन्ते मुनि सत्तम कि आपको पहले जन्म की बात कैसे याद आई। वास्तव में भक्त तो यहाँ पर सबसे पहले तो आध्यात्म बताया जा रहा है कि ये इस जन्म की बात नहीं है, पहले जन्म की बात है। यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि जिस प्रकार आत्मा के लिए अक्सर लोग बोलते हैं कि क्या प्रूफ है कि आत्मा वापस से जन्म लेती है, या कोई कोई लोग बोलते हैं किसने देखा है दूसरा जन्म होता है या नहीं होता है, तो नारद मुनि साक्षात अपने विषय में बता रहे हैं कि मैंने दूसरा जन्म लिया है, पहले मेरा दूसरा जन्म था, मैं दासी का पुत्र था और अभी मैंने ये दूसरा जन्म लिया है जिसमें कि भक्ति के कारण मुझे देवर्षि का जन्म मिला है। फिर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं आत्मा पे, लेकिन फिर भी अब तो मैंने पाश्चात्य देश में भी एंड स्टीवन ने एक ऐसी किताब लिखी है, बहुत बड़े साइंसदान हैं जिन्होंने पूर्व जन्म के ऊपर एक बहुत बड़ी किताब लिखी है जिसमें उन्होंने 2000 ऐसे उदाहरण दिए, 2000 ऐसे उदाहरण दिए ऐसे केसेस बताए जिन्होंने जिनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति याद है कि पहले जन्म में हम क्या थे। एक एक चीज देखिए, अभी गीता कोर्स हुआ था तो हम देख रहे थे, उसमें पूरा एक व्यक्ति आया था, वो बता रहा था कि पूर्व जन्म में जब मैं छोटा था, मतलब जब मैं 3.5 साल का हुआ, तो मुझे अपना पूरा पूर्व जन्म याद था कि मैं यहाँ पर रहता था, कौन से इलाके में रहता था, मैं कौन सा कार्य करता था, और एक राजा के यहाँ पर मैं नौकरी करता था और वहां पर मुझे मारा गया। तो कोई यकीन नहीं कर रहा था मतलब उसके ऊपर कि ऐसा ही है, तो फिर वापस से उसको लेकर गए, मतलब अब माता पिता परेशान हो गए कि सारा दिन बोलता रहता था कि मैं वहां पर है ना, मैं वहां रहता था, मेरा वहां पर घर था, एक दूसरे गांव के बारे में, मतलब एक दूसरा बहुत बड़ा जगह थी वहां के बारे में बोला था। तो वहां पर गए सब लोग, देखा तो वाकई में वो एक राज्य था, और वहां पर जाने के बाद हर एक, मतलब उसको हर एक ताले की चाबी के बारे में पता था कि ये इस ताले की चाबी है। तो बोला कोई, फिर भी यकीन नहीं किया, बोला कुछ और, तो फिर एक पेंटिंग टंगी हुई थी, बोला इसके पीछे खुफिया दरवाजा है। फिर वहां पर गए और अंदर वाकई में दरवाजा था, फिर बोला वहां पर एक ना एक पंखा है जो क्रोशन पे चलता है, ऐसे एक एक चीज बता रहा था। फिर वापस उसके बाद बोला अभी हमारे घर चलो, हमारा दूसरा महल, ये तो मतलब उधर आया था जहाँ कार्यशाला था, और फिर बोला मेरा एक घर है उधर चलो, और वहां पर उसकी पत्नी, वो 5 साल का बच्चा छोटा सा था, और उसकी पुराने पहले वाली ईयर की जो मतलब पहले वाले जन्म की जो पत्नी थी वो थी, उसको सबका नाम भी पता था कि मेरा दूसरा बेटा है और मेरा एक दूसरा बेटा भी है, उसका नाम ये है, वो सब समझ रहे, शायद हमारी ज्यादा थड़पने के लिए आए हैं, झूठ झूठ बोल रहे। लेकिन ना वो उसका बेटा बोलता है तुम पागल हो गए हो, इतने छोटे हो, आप कैसे बोल सकते हो कि दूसरा जन्म है, कोई ऐसी बात बताओ कि जो है ना हम यकीन करें वाकई। बोला जो सीक्रेट हो, जो सिर्फ मुझे पता हो। तो बोला हाँ ठीक है, तुम्हें मैंने एक बात बताई थी ना कि मैं अपनी एक खुफिया रिवॉल्वर यहाँ पर रखता हूँ, इस पेंटिंग के पीछे एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, वो खोलो और उसके अंदर रिवॉल्वर रखी होगी, और वो बिल्कुल अलग टाइप की रिवॉल्वर है, और उसके अंदर गोलियां डालने का तरीका भी मैंने तुम्हें बताया था, आओ मैं तुमको दिखाऊं कैसे था, मतलब एक एक चीज उसको करके दिखा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मा दोबारा जन्म लेती है, ये अब प्रूफ हो गया है। और क्यों लेती है, भगवान कहते हैं भगवद गीता में 8.6, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावत। जिस जिस भाव को याद करते हुए जीव शरीर छोड़ता है तो दूसरा उसको वैसा ही शरीर मिलता है, यानी कि अब जिस को हम याद करते हैं तो उसी तरह से संसार में हमें शरीर मिलता है। लेकिन भगवान कहते हैं 9.25 में, यान्ति मद्या जिनोपि माम, अगर मेरा स्मरण करते हुए आप शरीर को त्यागोगे तो मेरे पास आओगे। अगर दूसरे किसी का, जैसे यान्ति देवान मिता देवान, अगर देवताओं के देवताओं को स्मरण करोगे देवताओं के पास आओगे। यान्ति पितृन्यान्ति पितृवता भूतान्यान्ति भूतेजा यान्ति मध्यजनोपि माम, जिस इसको याद करोगे तो आपको दूसरा शरीर उसी प्रकार मिलेगा। तो यहाँ पर बात तो ये है कि वेद व्यास जी पूछते हैं कि चलो ठीक है दूसरा शरीर आपको मिला है, लेकिन आपको याद कैसे है दूसरा वाला शरीर, पहले वाली शरीर की चेतना कैसे याद है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि भले ही समय आने पर काल क्या करता है, यहाँ पर आगे बताते हैं ना, जैसे न ही व्यवधात काल, जब काल परिवर्तित होता है एष सर्व निराकृति, तो हमारी पूरी जो भी याददाश्त है हमारी स्मरण है पिछले वाला सब भूल जाते हैं हम लोग कि क्या थे। काल के प्रभाव से, जैसे अनुवाद देखिए, समय आने पर काल हर वस्तु का संहार कर लेता है, अतएव यह कैसे संभव हुआ कि यह विषय जो ब्रह्मा के इस दिन के पूर्व घटित हो चुका है अब भी आपकी स्मृति में काल द्वारा अप्रभावित जैसे का तैसा न ही एष व्यवधात, उसमें कोई आपको पक्का पक्का याद कैसे है, जैसे का तैसा याद कैसे। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा नष्ट नहीं होती है। ये बात है भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि 21 में नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चयनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे गला नहीं सकता, वायु उसे सुखा नहीं सकती, अजन्मा है, अविनाशी है। न जायते मृियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, ये न कभी जन्मी है न जन्म लेती है न जन्म लेगी, ये अजन्मा अविनाशी सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा कभी नहीं मरती। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते शरीर जो है उसके विनाश के बाद भी आत्मा नष्ट नहीं होती है, उसी तरह आध्यात्मिक चेतना भी नष्ट नहीं होती। अब देखो हमारे पास दो चेतना होती है, एक भौतिक चेतना होती है एक आध्यात्मिक चेतना होती है। हम अभी तक क्योंकि रजोगुण में है तो रजोगुण के अंदर हमारी भौतिक चेतना होती है, लेकिन जब भक्त शुद्ध सात्विक स्टेज पर आ जाता है, शुद्ध सत्व यानी तीनों गुणों से ऊपर आ जाता है, तो उसकी चेतना कैसी हो जाती है, उसकी चेतना विशुद्ध हो जाती, आध्यात्मिक चेतना हो जाती, क्योंकि गुण है इस भौतिक जगत के। और हम अभी कभी रजोगुण में होते हैं कभी सत्वगुण में होते हैं, तो इस तरह से क्या होता है हमारी चेतना भौतिक हो जाती है, लेकिन जब विशुद्ध सत्व में आकर जीव कार्य करता है तो उसकी चेतना जो है वो आध्यात्मिक हो जाती है। और नारद मुनि ने क्या किया था, पहले ही जन्म में अपनी आध्यात्मिक चेतना को विकसित कर लिया था। वो अब भौतिक गुणों के साथ नहीं रहते थे, आध्यात्मिक चेतना के साथ रहते थे। तो भौतिक शरीर की चेतना का अर्थ क्या है, भौतिक शरीर द्वारा अभिव्यक्त की गई आध्यात्मिक चेतना। इस शरीर भले भौतिक हो लेकिन जब हम शरीर को विशुद्ध सत्व में लेकर आ जाते, इसी शरीर के द्वारा जब भगवान के साथ अपनी चेतना को युक्त कर देते हैं तो फिर हमारी चेतना जो होती है वो आध्यात्मिक स्तर पर आ जाती है। यह चेतना जब तक भौतिक धरातल तक होती है ना, यानी कि जब तक तीन गुणों के असर में होती है तब तो विनाशशील हो जाती है, फिर हमें याद नहीं रहता, विकृत होती है। लेकिन जब आध्यात्मिक स्टेज पर आ जाती है, गुणों से ऊपर हो जाती है, विशुद्ध सत्व में आ जाती है, तो फिर ये भी आत्मा की तरह हो जाती है। जैसे आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है, तो हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है ना वो भी कभी नष्ट नहीं होती। तो नारद मुनि यहाँ पर भक्ति की महिमा को बता रहे हैं कि जब भक्ति जीव करता है, भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण करता है, तो फिर वो इस भौतिक जगत में होते हुए भी आध्यात्मिक स्तर तक आ जाता है। तो भक्ति का प्रभाव बताया गया, लेकिन इस संसार में क्या है, जितना कोई मतलब कोई सरल सी चीज किसी को बताई जाती है तो उनको ऐसा लगता है कि ये बहुत सरल है तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, है ना। जैसे अब कोई कोर्स आप करते हो किसी कॉलेज में, यदि कोई बैठते हैं बच्चे और वो वहाँ पर स्टडी सारी सरल सरल होती है, कुछ एक्स्ट्रा कोर्स वगैरह नहीं करवाए जाते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि इजी तो है बट इसका कोई प्रभाव नहीं, इसकी है ना कोई वैल्यू नहीं होगी, है ना। अधिक प्रभाव जैसे आजकल BA BCOM कोई वैल्यू नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उससे। क्या आप ये सर्टिफिकेट लेकर जाओगे ना तो आपको कोई साधारण सी नौकरी मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यदि आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो MBA CA इस तरह के कुछ ऐसे और ऐसी डिग्रियां होनी चाहिए आपके पास जो प्राप्त करने के लिए कठिन जतन किया जाए। इसी क्योंकि आप हम इतने भौतिक हैं कि हर वस्तु को भौतिक चक्षु से देखते हैं, तो उसी तरह जब कोई लोग प्रवचन में भी जाते हैं ना, तो अगर साधारण सी बात बता दी जाती है, जैसे अगर हम लोग बताते हैं कि भाई भक्ति योग बहुत सरल है, केवल क्या करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है, ईटिंग करना, प्रसाद खाना है, बस कृष्ण प्राप्ति, तो सब लोग हैरान हो जाते हैं। अरे बस आप लोगों की भक्ति इतनी है, श्रवण करो बैठ के, कीर्तन करो, डांस करो, प्रसाद खाओ, हो गए भगवान प्राप्त। नहीं, इतना सरल कैसे हो सकता है। लेकिन किसी के प्रवचन में जाएंगे और वो इतनी कठिन भाषा में ऐसे कठिन कठिन शब्दों को उपयोग करेंगे और वेदों के बड़े बड़े मंत्रास बताएंगे, तो वो उनको लगेगा हाँ यार कितना ज्ञानी है, इसको कितना ज्ञान है, सारे शास्त्र बता रहा था, ऐसे संस्कृत पढ़ रहा था ऐसे, तो आप बोलो अच्छा प्रवचन था, बोलेंगे हाँ, बोले समझ में क्या आया, करना क्या है, बोला लेकिन अभी इतना मुश्किल था मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो होशियार बहुत था, वक्ता ने बहुत अच्छा बोला, मेरे को समझ में नहीं आया, ये मेरी मिस्टेक है क्योंकि मुझे नहीं आ रहा था समझ में। लेकिन आपको अगर आप सत्संग में जाते हो, क्लास में जाते हो, तो उसका मतलब है आपको पता चलना चाहिए कि आपको क्या बताया जा रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या फायदा, भले वो कितने ही श्लोकों को जानता हो, कितना ही सिखा, अगर आपको नहीं सिखा सकता कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको करना क्या है, तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे सत्संग में जाने का। सत्संग में श्रवण का प्रभाव अवश्य होना चाहिए। यदि आपके ऊपर आप यदि समझ में ही नहीं आ रहा आपको, तो फिर प्रभाव क्या होगा, और यदि प्रभाव नहीं है तो वास्तविक सत्संग आपने किया ही नहीं। भगवान इतने कृपालु है कि वो चाहते ही नहीं है कि कलयुग के जो जीव है वो कोई मुश्किल रास्ते से मेरे पास आए। भगवान प्यार करते हमसे, और साफ साफ अर्जुन को बोला, अर्जुन ने जब पूछा था कि कृष्ण एक बात पूछूं आपसे, श्लोक नंबर 1 में 12.1 में पूछा था, एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः, एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते। आप मुझे सही से बताओ कि वो सतत युक्त है, जो सदैव आप में तत्पर रहते हैं और जो सदैव आपकी भक्त्यां पर्युपासते, भक्ति के साथ आपकी उपासना करते हैं, ये चाप यक्षरम अव्यक्तम, और जो दूसरे होते हैं जो निर्विशेष यानी कि ब्रह्म की पूजा करते हैं, जो भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं और जो भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं, तेषां के योगवित्तम, आप मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से अधिक संपूर्ण सिद्धि किसको मानोगे आप। भगवान आप मुझे ये बताओ कि साकार रूप की पूजा करने वाले को संपूर्ण मानते हो, पूर्ण सिद्ध मानते हो, या निराकार वालों को। तो भगवान ने साफ साफ उत्तर दिया सेकंड नंबर श्लोक नंबर से सेकंड में, मय्यावेश्य मनोयिमां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमामता। मेरी बात पूछ रहे हो ना, मैं कह रहा हूं दोनों गलत नहीं है, दोनों मेरे पास आ रहे हैं, भले निराकार की पूजा कर रहे हैं भले साकार की पूजा कर रहे हैं, मेरे ही किसी निराकार भी तो मेरा ही फॉर्म है ना। लेकिन फिर अगर मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूँ मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और श्रद्धया परयोपेता, श्रद्धा कसौटी है साकार रूप को पूजने की, यदि वो श्रद्धा से मेरी पूजा करते हैं, सदैव मेरे पूजा में लगे रहते हैं, ते में युक्त तमामता, मेरे द्वारा मेरा मत ये है कि वही सिद्ध है। तो फिर अर्जुन को कृष्ण बताते हैं कि चलो वो भी ठीक है अगर जो निराकार की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत मुश्किल रास्ता है। श्लोक नंबर 5 में भगवान ने बहुत ही प्रेम, अपने प्रेम को अपने अंदर समा नहीं सकते और बोल दिया कि वो रास्ता भी भले मेरे घर तक ही आता है लेकिन क्लेशोधिक तरस्तेषां नित्ययुक्ता उपासते अव्यक्त, क्लेशोधिक तरस्तेषां अव्यक्ता सत्तचेतसां अव्यक्ता हि गतिर् दुःखं देहवत्थिरवाप्यते। क्लेशोधिकतरस्तेषां, अर्जुन वो रास्ता बहुत कठिन है, अव्यक्ता सक्त चेतसा, जो अव्यक्त जिनका चित्त अव्यक्त में निराकार में लगा रहता है ना, वो रास्ता बहुत कठिन है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, जो आप चूंकि देहधारी हो, अब आपका मन जो है वो साकार रूप में आसानी से लगेगा, अव्यक्ता ही गतिर दुखम, आपको अव्यक्त की उपासना करना बहुत कठिन लगेगा, इसलिए क्या करो आप साकार रूप की भक्ति करो। और नारद मुनि यहाँ पर भक्ति मार्ग की विशेषता बता रहे हैं कि भक्ति मार्ग भले ही कितना ही सरल है लेकिन वही भगवान को सबसे प्रिय है। शास्त्र में श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भक्ति मार्ग के विषय में कहा गया है कि भक्ति मार्ग इतना सरल है कि यदि कोई व्यक्ति हाईवे पे खड़ा कर दे आपको और आंख पर पट्टी बांध कर बोले दौड़ो, कितनी हैरत की बात है, हाईवे पे खड़े हो आप और आंख पर भी पट्टी बंधी हुई है और चलने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है ऐसे हाथ आगे करो और अंधे जैसे चलते हैं कि किसी से टकराओ नहीं, ऐसे चलो नहीं, दौड़ो, फिर भी भक्ति मार्ग इतना सरल है और इतना सुगम है। शास्त्र कहता है न पते न तस, न पतेत का मतलब होता है आप कभी नहीं फिसलोगे और न स्खलितम यानी कि कभी गिरोगे भी नहीं, आप बेफिक्र होके आप भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ते जाओ, कभी भी नहीं फिसलोगे, कभी भी नहीं गिरोगे, मतलब आंख में पट्टी बांध कर अगर आप चलते हो, पट्टी बांधने का क्या मतलब है जानते हो, यानी कि यदि आप जप कर रहे हो और आपकी आंखें बंद हो जाती है, आपको नींद भी आ जाती है, अक्सर ऐसा होता है ना भक्तों को हम देखते हैं, ऐसा सबके साथ होता होगा कि जब हम भक्ति जब हम माला करते हैं या प्रवचन पढ़ते, कभी कभी ऐसा होता है प्रवचन में भी और माला में भी हमें नींद आने लगती है। तो शास्त्र कहता है यदि आपकी आंखें बंद भी होंगी तो भी भक्ति मार्ग पर लगे हुए हो तो उद्धार हो जाएगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर जप में नींद भी आ रही है, प्रवचन में नींद भी आ रही है, फिर भी भगवान देखता है ये श्रद्धा से मेरे नाम का जप करने का प्रयास कर रहा है, तुम कितना कर सकते हो ये नहीं देखता भगवान, कितना करने का प्रयास करते हो वो देखते हैं भगवान। तो भले कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे से जप नहीं कर पाते हैं, अक्सर ऐसा होता है ना कि कभी कभी नींद आ जाती है और कोई लोग हमें बताता है ना, अगर कोई पास में बच्चे कोई खड़ा होकर बताता है आप सो रहे हो माला कर रहे हो तो और भी भड़क जाते हैं, तुमको क्या लग रहा है मैं सो रहा हूँ, मैं माला कर रहा हूँ कब से, खाम खा के मुझे डिस्टर्ब करते हो, कोई उठाता है तो तुरंत दुर्वासा मुनि बन जाते हैं। तो लेकिन जब आप जप कर रहे हो भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो भले आप नहीं कर पाते हो, यानी कि भगवान देखते हैं कि आप कितना करने का प्रयास करते हो, भगवान उसी समय जिस समय आप पहली बार माला को उठाते हो और पहला मंत्र पढ़ते हो ना, उसी समय भगवान आपका उद्धार करने के लिए, आपके पापों का हरण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आगे आप कितना सफल होते हो वो नहीं देखते भगवान। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारः, तुम कर्म करो मेरी प्रसन्नता के लिए। यज्ञार्थात कर्म नो नत्र लोकोयम कर्म बंधन, आप भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो। फिर उसमें यदि सफल नहीं, एक बारी क्या हुआ, ऐसी कथा सुनकर एक भक्त गया ट्रेन में और सोचा कि अब मुझे नींद तो आ ही रही है, तो मैं माला कर रहा हूँ तो मुझे नींद आ जाए भले, लेकिन प्रभु ने बोला था कि माला करते हुए आपका हमेशा उद्धार ही होगा, तो मैं कर रहा हूँ फिर भी। तो अभी माला उठाई है और ट्रेन में बैठा हुआ है, वैसे ही माला करने में इतनी नींद आ रही होती है और उसको वैसे इतनी तेज तेज नींद लगी हुई है और ट्रेन तो ऐसे झूल झूल के चल रही है, ऐसा लग रहा है उसकी मम्मी ने उसको गोद में बिठा हुआ है और उसको लोरी सुना रही है, सो जा सो जा, फौरन से उसको नींद आ गई। अभी है ना जो उसके वो बार बार क्या कर रहा था, उसके साइड में जो बूढ़ा व्यक्ति था ना उसके ऊपर ऐसे गिर रहा था, उसके ऊपर वापस से गिर रहा, तो सामने वाली सीट जो थी ना वो खाली थी। तो उसने बोला कि तुम जाओ उधर जाके बैठो, यहाँ पर क्यों आप यहाँ पर नहीं बैठो, वो जगह खाली है ना वहां पर जाके बैठो। तो वो उधर जाके बैठा। अब क्या हुआ, जैसे ये सीट कैसे होती, सीधी सीधी सीट होती है, दो व्यक्ति इस तरह बैठते हैं दो व्यक्ति इस तरह बैठते हैं ना, तो एक बूढ़ा वहां पर अकेला बैठा हुआ था और सामने वाली सीट पर वो बैठ गया, एक पहले से खिड़की पर खिड़की के पास दूसरा व्यक्ति भी बैठा हुआ था, सही है, चारों लोग ऐसे तीनों लोग ऐसे सीट में बैठे हुए थे, बूढ़े के पास कोई नहीं बैठा हुआ था, सही है। फिर अभी वो क्या हुआ, वापस से उसको नींद आ रही थी, लेकिन अभी जिसके पास बैठा हुआ था उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं बोला, बोला अभी नींद आ रहा है, अभी सारा भगत है माला कर रहा है, तो बोल दिया उसको कहाँ पर तुम्हें जाना है मुझे बता दो, मैं तुमको जगा दूंगा। तो ठीक है, अभी थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, वो ऐसा पक्की नींद में सो गया और उसकी गर्दन पूरी नीचे गिर गई, उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, किताब विताब थी, तो पूरा गर्दन नीचे बैग के ऊपर रख दी। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद फायरिंग शुरू हो गई, एक जोरदार दो गोलियां निकली, एक उस बूढ़े को लगी और बूढ़ा गिर गया, उसके बाद दूसरी गोली सीधा जाके उसके पास जो जो सो रहा था ना उसके बराबर में जो बैठा हुआ था ना उसको जाके लगी, और गोली जब वो तो सोया हुआ था, ऐसी गोलियां मार के फायरिंग करके जो वो आतंकवादी थे वो भाग गए। और जैसे ही आवाज आई तो वो उठा और उसने देखा कि उस बूढ़े की भी मृत्यु हो गई और उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई, बीच में ये बैठा हुआ था और वो उसकी मृत्यु नहीं हुई, मतलब वो बच गया क्योंकि सो रहा था नहीं, क्योंकि भगवान का नाम जप कर रहा था। और वो बोल रहा था ऐसे कि यदि मैं जागा हुआ होता और सीधा बैठा हुआ होता तो दूसरी गोली डेफिनेटली मुझे लगती, क्योंकि अब मैं नीचे था तो फिर ना उसको लग गई। तो यहाँ पर ये वो ऐसे बता रहा था कि वाकई में अगर हम भगवान के पवित्र नाम को श्रद्धा से जप करते हैं तो भगवान सदैव हमारी रक्षा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हम भी अक्सर, अब यहाँ पर तो इतनी सारी फायरिंगें वायरिंगें होती हैं तो हम भी ऊपर नीचे होते रहेंगे और हम भी फायरिंग से बचते रहे, नहीं, इसका मतलब ये है कि भगवान उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। भगवान क्या कहते हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्, उसके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है उसे प्रोवाइड करता हूँ। किसका, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासित, जो अनन्य मन से मेरा चिंतन करते हैं उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तो भले ही भक्ति मार्ग बहुत सरल है, श्रील प्रभुपाद जी अक्सर बताते हैं ना उस श्लोक को कोट करते हैं कि 9.26 भगवान क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु प्रहतम अश्नामि प्रयतात्मना। कि भक्ति करना बहुत मुश्किल है, आपको कोई ना एक्सपेंसिव चीज भगवान ने नहीं मांगी है, कितना इजी, इतनी सस्ती सस्ती चीजें, एकदम सस्ती जो चीजें है ना, अभी एक पत्ता, पत्रम, पत्रम कितना मतलब मुफ्त का मिलता है, पत्रम, पुष्पम, पुष्प कितना सब मतलब कोई इतना महंगा नहीं मिलता, और फलम एक एक फ्रूट, और एक एक लिखा है, ऐसे भी भगवान ने नहीं कहा पत्रम मतलब एक पत्र, और पत्राणी अर्थात बहुत सारे पत्र, पुष्पाणी ऐसे नहीं बोला, बल्कि एक एक बोला है, सिर्फ एक पत्र, एक पुष्प, एक फल, एक जल का गिलास। वास्तव में उस वस्तु की कोई भी उस वस्तु का महत्व नहीं होता है, महत्व तो केवल उस भक्ति का है जिसमें लपेट कर एक भक्त उस वस्तु को भगवान को समर्पित करता है। इसलिए देखो गौर से कि इस श्लोक में दो बार भक्ति का शब्द आया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयस्यते। कुछ दे रहे हो तुम और योमे भक्त्या प्रयस्यते, तदहम भक्त्यु प्रहतम अश्न, तदहम भक्त्यु उस भक्ति से दी हुई वस्तु को मैं स्वीकार करूंगा। और भगवान ने कह दिया अश्नामी, अश्नामी का मतलब पता है क्या है? मैं खाता हूँ। भगवान भक्ति के विषय में बोलते हुए इतना भाव विभोर हो गए कि डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं कर पा रहे, भगवान को पता ही, भगवान समझ ही नहीं पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जो खाई जाती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो पी जाती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो सूंघी जाती है। इसमें सारी चीजों का नाम लिया पत्र। अभी पत्र वैसे तो खाया नहीं जाता, लेकिन चलो ठीक है, भगवान को तुलसी का पत्रा पसंद लगता है तो भगवान ने बोल दिया ठीक है तुलसी का पत्ता मुझे अर्पण करो। अब पुष्प, पुष्प कभी खाया जाता है क्या? पुष्प तो सूंघा जाता है। फिर भगवान ने बोला अश्नामी। अच्छा पुष्प भले सूंघा जाता है लेकिन फिर भी भगवान ने कहा तुम मुझे भक्ति से देते हो ना तो मैं ये नहीं देखूंगा। अब पानी जो है वो पिया जाता है ना, तोयम, तोयम भी बोला ना भगवान ने कहा, पत्रम पुष्पम फलम, फलम चलो खाया जाता है, इसमें से अगर देखा जाए तो फल खाया जाता है, पुष्प सूंघा जाता है और तोयम जो है वो पिया जाता है, पत्र अपनी मर्जी है, कोई कोई पत्ते खाते हैं, अब भगवान को अच्छा लगता है तो भगवान खा रहे हैं चलो ठीक है, लेकिन वास्तव में खाने की चीज खाली एक फल है। लेकिन भगवान ने कहा तुम भले कम से कम वैल्यूएबल वस्तु भी यदि मुझे देते हो भक्ति से। एक बारी क्या हुआ कि सारे भगवान के जितने भी ग्वाल बाल मित्र हैं वो वृंदावन में जब गैया चराने के लिए गए तो गैया चराने के बाद जब उनको भूख लगी तो मैया ने जो जो बांध के दिया था कलेवर वो सब उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा बहुत भूख लगी है अब खोलो ना सब, अब है ना सबने खोला और सब एक दूसरे को खिला रहे हैं। भगवान बहुत ही मतलब जो 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 एक लाए थे ना मित्र वो सबसे पहले कृष्ण को खिलाते थे, उनको अच्छा लगता था कि कृष्ण खाते थे और कृष्ण जब बोलते थे आह कितना स्वादिष्ट है तो फिर उस एक बाइट करते थे कृष्ण, फिर उस जब कृष्ण ने स्वादिष्ट बोल दिया ना फिर वो खाते थे, तब तक उनको अच्छा ही लगता था खाना क्योंकि उसको लगता था कि पता नहीं और उनको ये विश्वास होता था जब कृष्ण खा लेंगे तभी उसमें स्वाद आएगा। तो हर वस्तु को ऐसे दिखा दिखा के कृष्ण को खिलाते थे, कृष्ण देखो मेरी मैया ने कितना अच्छा ये अचास ली दी है, और कोई बोलता है कृष्ण आज देखो मेरी मैया ने कितना अच्छा मक्खन दिया है, कोई तो क्या करते थे कि अपनी पांचों उंगलियों को अलग अलग पिकल वो अचार है ना वो लगाते थे, फिर बोलते थे देखो ये आम का अचार है, ये नींबू का है, ये इसका है, देखो कृष्ण कृष्ण क्या करते थे, फिर सारी उंगलियों को माउथ से ऐसे चाटते थे और इस तरह से बहुत ही आनंद से खाते थे। फिर श्री राम ने कहा कृष्ण मेरी मैया ने आज इतना स्वादिष्ट लड्डू बनाया है आप खाओगे ना इतना अच्छा लगेगा, लेकिन एक शर्त है। कृष्ण ने कहा अभी खाने में क्या शर्त, भाई सही से खिला दो। बोला नहीं फिर नहीं खिलाता। तो कृष्ण ने कहा कि अच्छा ठीक है क्या शर्त है बताओ। उसने बोला आंखें बंद करो मुंह खोलो फिर खिलाऊंगा। कृष्ण ने कहा अच्छा ठीक है, आंखें बंद की मुंह खोला और श्री राम ने क्या किया मस्ती की और कृष्ण के मुख में लड्डू नहीं डाला बल्कि फूल डाल दिया। कृष्ण ने अब कृष्ण को क्या पता नहीं था कि उसके हाथ में लड्डू है या फूल है, उसके हाथ में क्या है वो तो वो जानते हैं, संसार में इस समय तक कितने लड्डू बन चुके हैं, किस किसने बनाए हैं और कितने लड्डू अभी बनने बाकी हैं। भगवान कहते हैं 7.28 में वेदाहं समतीत्यानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि, मैं भगवान हूँ और जो भूतकाल में घटित हो चुका है भविष्य में घटित होने वाला है वर्तमान में घटित हो रहा है उस सबको जानता हूँ। तो भगवान हर एक के विषय में जानते हैं, क्या भगवान को पता नहीं है उसके हाथ में लड्डू? लेकिन भगवान को पता है, फिर भी भगवान जीव से इतना प्रेम करते हैं कि चलो तुम्हें अच्छा लगे तो मुझे फूल भी खिला दो मैं खा लूंगा। अगर तुम्हें तो भगवान उस समय भी बोल रहे थे श्रीदामा, जानते थे श्रीदामा मस्ती कर रहा है, मुझे फूल खिलाएगा, लेकिन भगवान मुंह खोल के बोला हाँ ठीक है खिलाओ आ, तो फिर उसने खिला दिया और फिर बोला ये क्या तुमने मुझे बोला लड्डू खिलाऊंगा, तो वो सब हंस रहे थे। तो कृष्ण ने बोला ठीक है अगर आपको इसमें मेरे भक्त को इसमें खुशी मिलती है तो ठीक है, मैं कुछ भी मुझे खिला देगा, पत्ता खिलाएगा, फूल खिलाएगा, फल खिलाएगा, पानी खिलाएगा तो मैं खा लूंगा जो भी होगा। तो भगवान को भक्त जो भी भक्ति से खिलाता है, प्रेम से खिलाता है, भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यदि उसके अंदर भक्ति नहीं है, यदि प्रेम नहीं है, तो भगवान उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। दुर्योधन के 56 भोग की ओर भगवान ने देखा तक नहीं। भगवान किसी भी ऐश्वर्य से, अपनी किसी भी दूसरे ऐश्वर्य से या फिर टैलेंट से हम भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते। हम क्या समझते हैं, हम 4 श्लोक सीख लेंगे और प्रवचन अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा कर लेंगे तो उससे हम भगवान को प्रभावित करेंगे? हम कीर्तन करेंगे अलग अलग ट्यून्स के तो क्या भगवान प्रभावित हो जाएंगे? अलग अलग भौतिक वस्तु भगवान को प्रसाद अर्पण करेंगे और भगवान को प्रभावित करेंगे, डीटी ड्रेसिंग करेंगे और ना उससे भगवान को प्रभावित करेंगे या अपनी अच्छी ड्रेसिंग करेंगे? हाँ, कोई कोई लोग है ना, भक्त लोग हृदय में प्रेम नहीं, धोती बांधते हैं, इतना खूबसूरत तिलक लगाते हैं और है ना इसी मैचिंग माला पहन के और हरिनाम चादर पहन के आएंगे कि दुनिया में उस नंबर 1 का भगत दिखेंगे। लेकिन ये दिखावे से भगवान खुश नहीं होते हैं। भगवान तब तक प्रभावित नहीं होते जब तक हृदय के अंदर भक्ति नहीं होती है, हृदय के अंदर प्रेम नहीं होता है। तो शास्त्र कहता है भक्ति तुष्टति कैवलैर नच गुणैर भक्ति प्रियो माधव। माधव को यदि कुछ प्रभावित कर सकता है, यदि कुछ प्रिय है, तो केवल भक्ति तुष्टति, केवल ही भक्ति उनको प्रसन्न कर सकती है, केवल भक्ति से वो संतुष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त नच गुणैर, आपकी जो क्वालिटीज हैं उनकी ओर तो कभी भगवान देखता ही नहीं है। लेकिन यदि वो प्रेम के साथ आपके अंदर, भले आप अच्छा कीर्तन करना नहीं जानते हो, आपके आवाज में इतना स्वर नहीं है, आपको अच्छे शब्द बोलना नहीं आते हैं, लेकिन यदि प्रेम करते हो कृष्ण से, काफी भगवान को बहुत अच्छा लगता है। प्रेम अत्यधिक आवश्यक वस्तु है। प्रेम के अतिरिक्त इस भौतिक संसार में तो क्या, आध्यात्मिक संसार में भी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सके। क्योंकि भगवान इस संसार की जितनी भी वस्तुएं है ना, वो उसका आकर्षण कामदेव के आगे समाप्त हो जाता है। और कामदेव को क्या कहते हैं, मदन। और भगवान के सामने आते ही कामदेव का आकर्षण समाप्त हो जाता है, इसलिए भगवान को बोलते हैं मदन मोहन। परंतु इस मदन मोहन का भी आकर्षण मदन मोहन मोहिनी के सामने आते समाप्त हो जाता है। और मदन मोहन मोहिनी किसको जानते हैं? भक्ति की शक्ति यानी प्रेम की पराकाष्ठा, जो श्रीमती राधा रानी, जो जब भगवान से इतना प्रेम करती है कि भगवान स्वयं उनके अधीन हो जाते हैं। तो ये भक्ति है जो भगवान को अपने अधीन कर देती है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। लेकिन भक्ति मार्ग भले सरल हो, लेकिन भक्ति दिखे तो सही, ऐसा हम खाली नहीं बोल सकते चलो ठीक है अब तो हम भगवान के भक्त हैं। भक्ति है तो भक्ति दिखनी चाहिए। किस तरह से दिखेगी? हमारे प्रयासों से। हम कितना प्रयास कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए? क्या हम अब जब हम भक्ति करते हैं और शुद्ध हृदय से प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर वो गुण आ जाते हैं जो भक्त के अंदर होने चाहिए? भगवान बताते हैं भगवत गीता में 13.8, 9, 10, 11, 12 में कि भक्त के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। बहुत ही सुंदर भगवान कहते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्चवम आचार्योपासनम शौचम धैर्यमान मात्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अन्नहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्ति अनभिश्वंग पुत्रधार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तदेशे देशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसिधि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अर्थात ये गुण जो भगवान ने बताए हैं यहाँ पर 20-22 क्वालिटीज टोटल 26 बताते हैं। इसमें भगवान ने क्या बताया, अमानित्वम अदम्बित्वम विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रामाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति वैराग्य संतान स्त्री तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति अच्छी तरह बुरी घटनाओं के प्रति समभाव मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति एकांत स्थान में रहने की इच्छा जन समूह से विलगाव आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज। भगवान ने बहुत सारे इसके अतिरिक्त विशिला रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि भक्तों की 26 क्वालिटी। अब एक भक्त के अंदर केवल 26 क्वालिटीज नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अतिरिक्त और कोई क्वालिटी नहीं होती है, ऐसा नहीं है। भक्त की क्वालिटी 26 पर आकर लिमिटेड नहीं हो जाती। जैसे हम देखते हैं अंग्रेजी में अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 अल्फाबेट्स होते हैं, परंतु इन 26 अल्फाबेट से करोड़ों शब्द बनते हैं, करोड़ों किताबें लिखी जाती है, सारी लाइब्रेरी में जितनी भी बुक्स होती है वो सब इन्हीं 26 शब्दों से मिलकर बनी होती है। उसी प्रकार भक्त के अंदर केवल 26 गुण नहीं होते हैं, समस्त गुणों का स्रोत होते हैं। भक्त के अंदर ये सारे गुण डेवलप होने चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है हराव भक्ता से कुतो महत गुणा। हराव भक्ता, यदि भक्ति नहीं है भगवान आपके अंदर, भगवान की भक्ति नहीं है तो कुतो महत गुणा, आपके अंदर कोई गुण हो ही नहीं सकता। भले दिखने में कोई लोग बोले इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज नहीं है, लेकिन यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आपकी क्वालिटीज किसी काम की नहीं। गुण आपके भले कोई भी हो तो वो सब बेकार है अगर आप भगवान की भक्ति नहीं करते हो तो। हराव भक्ता से कुतो महत गुणा समसते सुर। और अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो देवताओं के अंदर जितने गुण हैं वो सारी क्वालिटीज उस भक्त के अंदर स्वतः आ जाती है। आपको क्या करना है, केवल भगवान की भक्ति करनी है। और भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है, शास्त्र कहता है भक्ति स्टार्ट होती है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। ये तीन चीज अगर हम, वैसे तो नवदा भक्ति है लेकिन तीन चीज को हम लेंगे, ऐसे कहा गया श्रवणम कीर्तनम स्मरण। पहली शर्त क्या है भक्ति की, कि आप भगवान के विषय में कितना श्रवण करते हो, कितना श्रवण करते हो। ऐसे नहीं बताया गया कीर्तनम श्रवणम स्मरणम कि आप पहले कीर्तन करो उसके बाद श्रवण करो या फिर स्मरण। कोई कोई लोग बोलेंगे हमारे हृदय, अच्छा कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं एक क्षण भी नहीं होता है कि मैं भगवान की स्मृति मेरे हृदय से हटे, है ना। ऐसे बोलते हैं कि क्या जरूरत है मुझे श्रवण करने की, क्या जरूरत है मुझे कीर्तन करने की, मैं स्मरण तो करता रहता हूँ। लेकिन शास्त्र ने कहाँ कहा है ऐसा, स्मरणम श्रवणम कीर्तनम, ऐसे तो नहीं बोला कि पहले आप स्मरण करो फिर जब भी मूड होगा तभी जाके श्रवण करना और फिर कीर्तन करना। नहीं, अगर आपको नियम का फॉलो करना है तो पहले आपको क्या करना है, श्रवण करना है, उसके बाद कीर्तन करना है, उसके बाद स्मरण आपको करना है भगवान का। क्योंकि जब तक हम शुद्ध वैष्णवों से श्रवण नहीं करते तब हमारे स्मरण की विधि गलत होती है। हमारे कीर्तन की विधि तब तक सही नहीं हो सकती जब तक कि हम श्रवण नहीं करेंगे शुद्ध वैष्णव से। तो फिर ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ, शास्त्र बोल रहा है आप मेरे से नहीं श्रवण करो, आप भले ही किसी शुद्ध वैष्णव को ढूंढो, ये आपकी ड्यूटी है ना। यहाँ अगर भक्ति करनी है, भक्ति से भगवान को संतुष्ट करना, तो आपकी ड्यूटी है कि किसी शुद्ध वैष्णव को ढूंढो, उससे श्रवण करो, आपको जो आपको शास्त्र को एज इट इज बताता है, ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वहां आसन पर बैठ के अपनी बातें आपको बताएं और फिल्म की स्टोरीज बताएं, या फिर है ना कोई भी बस ऐसे ही टाइम पास करा दिया, आपको ये बता दिया वो बता दिया, शास्त्र से रिलेटेड करके कुछ नहीं बताया। तो फिर ऐसा श्रवण करने के लिए नहीं बोला है, आपको एज इट इज वही श्रवण करना है जो शास्त्र में लिखा हुआ है। तो इस तरह से भक्ति जो है वो प्रगत होती है। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आपको ऐसा लगता होगा अभी बोला भक्ति इतनी सरल है, इतनी सरल है, और अभी बता रहे इतनी सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, ये होना चाहिए आध्यात्मिक, उसके अंदर ये होना चाहिए भगवान को भी। तो वास्तव में भक्ति, श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति इज इजी, भक्ति इज नॉट डिफिकल्ट बट नॉट चीप, इतनी सस्ती नहीं है कि मुफ्त में मिल जाएगी, उसके लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, आपको और कुछ नहीं करना, और सारे गुणों को छोड़ दो, एक ही महत्वपूर्ण गुण है, बस वही काफी है। और क्या वो क्या है, त्रणादपि सुनी सेना तरोरपि सहिष्णुना मानी न मान देना कीर्तनी है सदा है। राह में गिरे हुए तिनके से भी जो अपने आप को तुच्छ समझता है, और जो वृक्ष से भी अधिक सहनशील है, जो अपने लिए मान की कोई उपेक्षा नहीं करता और अन्य समस्त लोगों का सम्मान करता है, वही मेरा सतत कीर्तन कर सकता है। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना है, भक्ति में आगे आने के लिए सबसे पहले विनम्रता, एक ही गुण। और यहाँ पर अभी भी हमने पढ़ा ना, उसमें भी सबसे पहले विनम्रता था, अमानित्वम अदम्बित्वम, सबसे पहला गुण है विनम्रता। यदि भक्त के अंदर, किसी के अंदर ये गुण भगवान को बहुत आकर्षित करता है ये गुण, और यही मुश्किल लगता है भक्तों को, है ना। विनम्रता नहीं आती तब तक कोई गुण नहीं आ सकता, तब तक हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कीर्तन अगर आप करना है, यदि आपको भक्ति करनी है, तो सबसे पहले विनम्रता के गुण को आपको विकसित करना होगा। तो यही वो भक्ति है जिसके आज नारद मुनि महत्व बता रहे हैं अभी, मतलब जिसके कारण नारद मुनि को अब ये ना देवर्षि बनाया गया, देवर्षि का की पदवी प्राप्त हुई। तो अब कल नारद मुनि के मुखारविंद से सुनेंगे कि क्या हुआ था उनके साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, और आप प्लीज मेरे लिए यूं ही प्रार्थना करते रहिएगा ताकि मैं अच्छी भगवान की सेवा कर सकूं, अपने नियम को फॉलो कर सकूं, और अच्छे से सारे श्लोक पढ़ के आप सबको सुना सकूं। श्री प्रभुपाद की जय। हरि बोल।